ज्ञानोत्विनन्दस्य गणञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयीहं ददाति सपदं तिगं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीजूतपद्मफलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं शाग्रजातं सहगणरमणतं नितं तं सजीवं साधुतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राधाकृष्णपदं सहगणललितां च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीतिनामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्थत्वदेशतारिणी वंशाकल्पतरुवर्ष कृपा सन्दुभ्यैव च पतितानं पावनं वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुतीशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपसर्पकं भक्तावतरं भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज वैशाख अमावस्या है, आज गदाधर पंडित की आविर्भाव तिथि। तो इनकी आविर्भाव भी अमावस्या में और गमन भी तिरोभाव जो भी है ये भी अमावस्या में है। ये वैशाख अमावस्या में और आषाढ़ अमावस्या में रथ यात्रा के दो दिन पहले इनकी अप्रकट है टोटा गोपीनाथ में। तो गौरंग महाप्रभु के जो परिकार है उनकी तिरोभाव लगभग ये रथ यात्रा के आगे पीछे ज़्यादा है। जो जगन्नाथपुरी में रहते उनको ये याद आती थी वो सहन नहीं कर पाते थे रथ यात्रा के समय। तो दो दिन पहले ही हुआ रथ यात्रा से और ये आविर्भाव। ये इधर हम देखते हैं कृष्ण भगवान कृष्ण अष्टमी का जन्म लिए और राधा रानी भी अष्टमी में और ये पूर्णिमा में और एक अमावस्या में। ये पूर्ण दोनों इनके अवतार। तीन के अवतार होने का कारण नरोत्तम दास ठाकुर तो बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गोचरण में जाते थे तो एक झलक देखकर राधा रानी रोती थी, कुकिंग करती थी और रोते रोते एकदम आंखों से जल एकदम गीला हो जाते थे। तब उनके सांस यदि पूछती थी तो वो बताते थे कि ये कुकिंग कर रहे धुआं आ रहा है इसके लिए इतना आंखों से जला है। राधा रानी की यही मनोरथ थे कि देखो सभी लोग जा रहा है, हम यदि पुरुष हो जाता तो मैं भी कृष्ण के साथ ऐसे जा सकते थे, एक झलक के बिना हम तो उनको देख भी नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की ऐसे कोई कृपा करे कि हमेशा हम भगवान के साथ जैसे रह सकते हैं। तो इसके लिए ये भी एक कारण है कि वो गदाधर रूप में अवतीर्ण हुआ, गौर शक्ति गदाधर। और कोई प्रश्न एक बार प्रश्न किए कि चैतन्य महाप्रभु तो राधारानी है तो गदाधर का क्या जरूरत था। तो इसमें बोले कि ये इसलिए आए हैं कि राधारानी देखने आई हैं कि चैतन्य जो कृष्ण मेरे भाव में कैसे वो ये विरह में ये रोते हैं, इसको ये कैसे भाव मेरे एक्टिंग करते हैं कृष्ण, इसलिए ये देखने के लिए राधारानी गदाधर के रूप में आई हैं। तो ये नवद्वीप में महाप्रभु के घर जगन्नाथ मिश्र शचीमाता और माधव मिश्र और रत्नावती गदाधर पंडित के पिताजी का नाम है माधव मिश्र और माताजी है रत्नावती। एकदम महाप्रभु के घर के निकट ही है और महाप्रभु से थोड़ा एक दो साल के छोटे है, ये उम्र बताए नहीं लेकिन महाप्रभु से छोटे हैं गदाधर पंडित। तब उन्होंने जन्म लेने के बाद ये सभी थोड़ा छोटे खेलने के लिए खेलने लायक हुए तो हमेशा महाप्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए, उनके बिना कभी महाप्रभु के आंगन में खेलते थे कभी गदाधर के आंगन में हमेशा खेलते थे और उनके बिना रह ही नहीं सकते थे। लेकिन महाप्रभु में कुछ विपरीत स्वभाव था पहले, भक्ति भक्ति के अलावा दूसरे दूसरे चर्चाएं करते थे, व्याकरण के सूत्रों की ये वो तर्क तर्क करते थे जो उनको गदाधर को बिल्कुल ये बचपन से ही भक्ति भावना की है। एक साथ में स्कूल में भी जाते थे और लेकिन अच्छा तो गदाधर को नहीं लगता था महाप्रभु को, लेकिन छोड़ के रह भी नहीं सकते थे। महाप्रभु को बिना छोड़ के रह भी नहीं सकते हैं और महाप्रभु इस तर्क वितर्क करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बहुत लड़ते थे, ऐसे ऐसे लड़ते थे कि कभी कभी तो मारपीट होता था, मार के महाप्रभु मार के दूसरे गंगा के दूसरे ओर चले जाते थे बच्चे को, फिर अपने पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो जंगल गंगा जाकर लड़ते थे और वो गुरु को भी गाली देते थे तो तेरा गुरु क्या है, कुछ नहीं जानता, तो कैसे गए तुझे ते ऐसे। लेकिन गदाधर पंडित ऐसे होने के बाद भी वो अलग नहीं रह सकते, उनको तो रुचि नहीं है इसमें लेकिन अलग नहीं रह सकते थे हमेशा। एक बार जो दोनों अलोका तीर में गए और भी और परिकर लोग गए तो जाके एक तोता है, तोता गोर गोर गा रहे थे तो बोले ये तो वृंदावन है महाप्रभु जी, बोले ये तो वृंदावन है, ये तो राधा कृष्ण गाना चाहिए, तब क्यों गोर गोर क्यों गा रहे हो, गोरा गोरा क्यों गा रहे हो। तो उन लोग वो पकड़ के लेके आए, एक महाप्रभु के खेलने वाले एक पकड़ के लाए तो महाप्रभु उनसे पूछे क्यों ऐसी, ये तो वृंदावन है, ये तो राधा कृष्ण गाना चाहिए, अब गोर गोर क्यों गा रहे हैं। बोले नहीं अभी जो है वही कृष्ण राधा कृष्ण, आप कृष्ण है ये मेरा गदाधर भी थे ये राधारानी है। इसी प्रकार महाप्रभु बोलते मैं कृष्ण उपासक हूं, दूसरा नाम मेरे कान में अच्छा नहीं भाता है, तीसरी उनको फेंक दिए, तोता को फेंक के महाप्रभु चल दिए, बोले मैं दूसरा नाम सुन नहीं सकता हूं। इसी प्रकार ये गौर गदाधर है, पंचतत्व आत्मकम कृष्णम भक्तु रूप सर्वकम भक्तावतरण भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम पंडित गोसाई प्रभुर भक्तो अवतार अंतरंग भक्त संगे गणना जहार। तो पंडित गोसाई जो है गदाधर पंडित ये शक्ति अवतार है, पंचतत्व आत्म भक्त रूप चैतन्य भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु भक्त अवतार अद्वित आचार्य और भक्त शक्ति गदाधर और भक्ताक्षम श्रीवास पंडित, ये पंच तत्व इस कलयुग में गदाधर पर राधारानी शक्ति गदाधर के रूप में आए हैं। तीसरे प्रकार गदाधर ऐसे खेलते थे हमेशा महाप्रभु के साथ, तो जब महाप्रभु ईश्वरपुरी घूमते घूमते उनका एक स्वभाव था, बहुत नरम स्वभाव थे और वैष्णव की सेवा करने में उनका बहुत रुचि था, उनके पास सत्संग कथा भी सुनते थे और कोई भी वैष्णव नवद्वीप में आते तो उनकी सेवा करते हैं, इनकी स्वभाव है। तो ईश्वरपुरी पाद आए, नंदन आचार्य के घर में रुकते थे, तो गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ में रहते थे लेकिन अवसर पाकर वो हमेशा जाकर हर दिन जाकर ईश्वरपुरी की सेवा करते थे। और महाप्रभु जी मिले, महाप्रभु से मिलने के बाद महाप्रभु उनके चरण में प्रणाम किए और एक उन्होंने कृष्ण लीलामृत ग्रंथ लिखे थे, उस ग्रंथ के अध्ययन गदाधर पंडित के कराया और महापुरुष से बोले कि आप इसको थोड़ा शोधन कर दो। और महाप्रभु भी उनसे मिलते थे, निमंत्रण करके खिलाए। तीसरी प्रकार गदाधर जब तक ईश्वरपुरी नवद्वीप में थे हर दिन जाकर सेवा करते थे। तो ऐसे महाप्रभु गया जाने के बाद, गया से जब रिटर्न गए तो महाप्रभु के भाव में परिवर्तन आए। तो और वो निमाई पंडित नहीं है, अभी भक्त निमाई है। तो भक्त लोग बोलते थे कि ये यदि भक्त हो जाता तो कितने अच्छा होता। तो बोलते थे मैं एक दिन ऐसे भक्त बनूंगा, निमाई बोलते थे, को आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। तो महातवी सभी भक्त लोग महापुरुष जब आए तो सोची मत कि एकमात्र प्यारे पुत्र निमाई ऐसे पागल जैसे हो गए, इतने रोते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, ये करते हैं, कोई इतना रोते हैं, इतना जोर से हुंकार करते हैं। तो बहुत चिंतित हो गई माँ। तो जो जो बोलते हैं, बोले पागल हो गया, बांध के रख दो उनको, कोई नारियल पानी पिलाओ, उनके शीतल तेल लगा दो, उनके शरीर गर्म हो गया, तो ऐसे बोलते हैं। एक दिन महाप्रभु कृष्ण विरह में व्याकुल होकर गदाधर पंडित से पूछा, गदाधर कृष्ण कहाँ है? तो गदाधर ने बोल दिया कि प्रभु कृष्ण आपके हृदय में है। मेरे हृदय में कृष्ण है? तो महाप्रभु अपने साथी को फाड़ने लगा। तो गदाधर अपने शची माता वगैरह उनकी हुंकार को देखकर वो नजदीक नहीं आ पाती है। तो गदाधर देखे तो भरे महापुरुष तो अपने फाड़ देंगे साथी को, जो भी नाव नहीं फाड़ते तो सिल देंगे उधर। तो उन्होंने महापुरुष बोला नहीं अभी बाहर चले गए। भाव जो होते ना, जो पगल जैसे होते हैं ना, वो कोई भी बात उसमें एकदम सरल हो जाते हैं। वो तत्व विचार उनमें नहीं रहता है कि नहीं हृदय में हमेशा रहता है। तो गदाधर जैसे बोले नहीं अभी तो बाहर चले गए। तब महापुरुष छाती फाड़ना बंद कर दिए। तब शची माता दूर से देखी, देखकर वो बहुत खुश हो गई। जे देखो ये तो कितना टेक्निक से, सरल बातों से उनको महाप्रभु निमाई को समझा दिया। तो इसलिए माँ आज्ञा दे दी कि गदाधर तुम हमेशा निमाई के साथ रहना, क्योंकि निमाई को संभालना हम लोग नहीं संभाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी विष्णुप्रिया को बैठा देते थे, लेकिन ऐसे महाप्रभु तर्जन गर्जन करते थे वो भी भाग जाती थी। विष्णुप्रिया देवी महाप्रभु के पास नजदीक बैठा देते, सची माता की ये थोड़ा इनको देखकर शांत हो जाए, नहीं कुछ भी। इसी प्रकार माँ आज्ञा दिए गदाधर पंडित को हमेशा उधर रहने के लिए। तब गदाधर पंडित एक दिन महापुरुष जब श्रीवास आके महापुरुष से मिले, तो एकांत में महापुरुष से श्रीवास से पूछा कि श्रीवास तुम बोलो मैं पागल हो गया, मैं पागल हूं? तो श्रीवास बोला नहीं प्रभु, आप तो असली पागल है। जो पागल सबको होना चाहिए, आप कृष्ण के लिए पागल है, ये सांसारिक पागल आप नहीं है, दिमाग खराब आपके नहीं है। तभी बोला आप यदि मुझे श्रीवास तुम बोल देते कि मैं पागल हूं तो मैं गंगा में छलांग लगा के आत्महत्या कर देता। इसी प्रकार एक दिन महापुरुष भक्तों को मैसेज दिए कि मैं शुक्लांबर के घर से घर पे आज सबको मिलूंगा। तो महापुरुष सारी बात बताते हैं, मुझे मेरी ऐसे दशा कैसे हो गई है। इसी समय सभी भाव में बेहोश हो गए और सभी लोग रोने लगे। कुछ समय बाद वो थोड़ा अंदर थे श्रीवास या गदाधर, तो सभी का रोना शांत हो गया, महाप्रभु के भाव शांत हो गए, लेकिन अंदर से रोने का आवाज बंदनी हो रहा था। तो महापुरुष ने पूछे क्या कौन रो रहे हैं? बोला प्रभु आपके गदाधर। तो महापुरुष बहुत प्रशंसा की इनके, देखो ये बचपन से इनकी इतनी सुंदर भक्ति भाव है, ऐसे मेरे मुझ में इसकी एक भी कण भाव नहीं है। तो इस पर गदाधर पंडित इन्हें तात्विक गदाधर जी अद्वैत आचार्यों से भागवत पढ़ते, भागवत आचार्यों में से महान आचार्य है जो रघुनाथ भट्ट भी है, रघुनाथ भट्ट भी उनसे पढ़ के आए हैं भागवत। तो अद्वैत आचार्य जो भागवत आचार्य थे उनसे बहुत लोग पढ़े भागवत, लोकनाथ गोस्वामी आदि सभी लोग, तो इनसे अद्वैत आचार्य से भागवत पढ़े थे। तब एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन प्रारंभ किया तो महाप्रभु एक दिन बाप बाप, पिताजी को बंगला में बाबा बोलते हैं, बाप बाप पुंडरीक बाप, ऐसे महाप्रभु कीर्तन के आवेश में बोल रहे थे। तो किसी को पता नहीं लगा क्या बोल रहे हैं, पुंडरीक तो कोई है ही नहीं। तब कुछ दिन बाद उन्होंने आए, छुप के रहते थे, वो ज्यादा मिलते नहीं थे किसी से, बहुत शिष्य समन्त लेके आया, ब्राह्मण है, बहुत शुद्धाचारी है, बहुत बहुत ज्यादा। तो उन्होंने आके रहा भक्त के साथ, तो मुकुंद और वासुदेव ये भी चट्टग्राम के है, ये पुंडरीक विद्यानिधि को अच्छा अच्छे जानते हैं, और गदाधर की स्वाभाविक उनका स्वभाव है भक्ति, वैष्णव को वैष्णव से मिलना, दर्शन करना, उनकी सेवा करना, तो ये मुकुंद जानते थे। मुकुंद ने बोला कि चलो एक नए वैष्णव है उनके दर्शन करके आते हैं। बोला ठीक है चलो, गए तो जाके देखा बहुत ऊंचा आसन में बैठा है एकदम, ये क्या व्हाइट है इतनी, ये तो खादी जैसे एकदम सूक्ष्म वस्त्र पहना हुआ, एकदम नरम, इस बहुत ऊंचा आसन में बैठा हुआ है, चारों ओर से जो तकिया है ये तकिया सजा के रखा है, पान की पान चिबाते रहते हैं, वो चंदन सुगंधी बालों में बहुत सुगंधी लगाते हैं, और तिलक भी ये गोपी चंदन से नहीं, चंदन से तिलक करते हैं एकदम। ये अभी तो चंदन वगैरह भी बहुत हम ढूंढते हैं, इधर चंदन भी ठीक से नहीं मिलता है, 800 रुपये अभी भी है। और एक भक्त एक बार मथुरा में बोले 44,000 1 किलो, तो ऐसे भी चंदन, तो वो चंदन से तिलक करते थे, और पूरा चारों ओर से चामोट ढुला रहे हैं। इसको देखकर गदाधर पंडित की सुनकर जो भाव था वो भाव उड़ गया, बोला बहुत अच्छा होता, मैं आता नहीं था, आया तो अभी क्या करूं। यही से वैष्णव तो शरीर के प्रति कोई उनका ये नहीं होते हैं, ये तो एकदम शरीर के प्रति पूरा आसक्त है, एक चीज नहीं हर चीज पूरा टिप टॉप, कोई भी चीज लो, पान हुका पीने के लिए वो भी उसका नाली वगैरह बहुत अच्छा से पीतल से थूकेगा, वो भी बहुत पीतल से एकदम सजा के चमका के रखा है सब कुछ, पीक जो फेंकेंगे। इसी प्रकार ये देखकर इनके मन में संशय हुआ, मुकुंद समझ गया, मुकुंद समझे तो ये भगवान के कोरोना के बारे में जो भगवान विश्व स्तन लगा के पूतना आए और भगवान को वो स्तन पिलाए और भगवान उनको मारने आई थी, उनको मातृगति प्रदान की इसी कोरोना को, जब इसी श्लोक मुकुंद तो आप जानते हैं इतनी सुंदर उनके कंठ है जो वे गाएगा महाप्रभु बैठ नहीं सकते हैं, मुकुंद गाएंगे तो तुरंत महाप्रभु नृत्य करेंगे, तो ऐसे सुंदर सुरीले कंठ से ये श्लोक गाए, श्लोक गाने से पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे भाव विभोर हो गए, वो उच्च आसन से नीचे कूद पड़े, लोटपोट होने लगे, अपने कपड़े को फाड़ने लगे, ये लात मार के अपने सोई विस्तार विस्तार इधर उधर कर दिया, और कृष्ण के लिए बिल्कुल पागल हो गए, बालों को भी नोचने लगे, ऐसे हो गया। इसकी जानते हैं अष्टसात्विक भाव के दिखवाटी तो नहीं है, अष्टसात्विक भाव के बारे में वो जानते हैं, तो इसी को देख कर उनकी ग्लानी हुई गदाधर की कि ये मैं तो बहुत गलत समझ बैठा हूं, मुझे अपराध हो गया, पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति इतनी अच्छी इतनी भाव है, जिनकी एक क्लेश भाव मेरे अंदर नहीं है, ये मैं इनको विषय महाविषय सोचा हूं। तो तब उन्होंने विचार किया, मुकुंद से बोले कि देखो मेरे मन में जो भाव आ गया था, मुझे अपराध हो गया, इसलिए उन्होंने दीक्षा लेने चाहा। दीक्षा लेने चाहा तो उससे पुंडलिक विद्यानिधि को मुकुंद जाके बोले कि ऐसे ऐसे शांत होने के बाद बोले कि ऐसे ऐसे वो दीक्षा लेने चाहे, तो बहुत अच्छी बात है, विधि मुझे बहुत अच्छा रत्न मिला है। तब तो उनको भगवत दीक्षा दिए गदाधर पंडित को शिष्य बने। इसी बीच में महापुरुष कीर्तन कीर्तन करते करते महापुरुष सन्यास लेके जब चल दिए, तो इसमें दो प्रकार जो जगन्नाथपुरी जाने का बात है। चैतन्य चरितामृत बोलते हैं नित्यानंदो मुकुंद जगदानंद दामोदर पंडित, ये चार लोग साथ में गए थे। और चैतन्य भागवत में ये चार तो हैं और ब्रह्मानंदो और गदाधर के नाम भी है, छह लोग महाप्रभु के साथ में गए। तो लेकिन चैतन्य चरितामृत स्पष्ट वर्णन है दो साल की लीला में, पूरी में भी जो महाप्रभु जाकर जो लीला की, इसमें गदाधर की कोई वर्णन चैतन्य चरित तो है नहीं। महाप्रभु के साथ में जाने का दो साल बाद में जो महापुरुष आए तब गए। तो इसी प्रकार महापुरुष सन्यास लेके चले गए, तो दो साल बाद जब खबर मिले, सभी भक्त लोग इतनी उत्कंठ सब में मन में थे क्योंकि कोई खबर नहीं है महापुरुष गए। लोकनाथ गोस्वामी सुना कि महापुरुष सन्यास लेके दक्षिण भारत गए। महापुरुष दो साल तक घूमा, दो साल घूम के बंगाल और जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी से दो साल तक जगन्नाथपुरी में रहे, एक साल बंगाल गए, उसके बाद आए वृंदावन। लोकनाथ गोस्वामी जब वृंदावन दर्शन करके महापुरुष प्रयाग जा चुके हैं, लोकनाथ गोस्वामी महापुरुष ढूंढ ढूंढ के मिला नहीं, छह साल बाद आए। तो पहले कितना तकलीफ था मिलना, क्योंकि पैदल पैदल इतनी दक्षिण भारत, इतना ये MP होकर महाराष्ट्र होकर गए घूम घूम के, लोकनाथ गोस्वामी कुछ मिला ही नहीं महाप्रभु, मिलने के लिए गए थे महाप्रभु से। तीसरे प्रकार भक्त लोग जाके बड़ा उत्कंठा था, सभी लोग मिले। उसी समय गदाधर पंडित आए महाप्रभु से, महाप्रभु जी उनको टोटा गोपीनाथ जो मंदिर आप लोग विराजमान देखते हैं, ऐसे मंदिर नहीं था, टोटा गोपीनाथ जी अभी नहीं था। वास्तव में वृंदावन भाव से देखेंगे वो जो चटक पर्वत है वो गिरिराज गोवर्धन है, उस बट वृक्ष है वो बंशीवट है। और महापुरुष के दर्शन करके वो समझते थे, समुद्र को दर्शन करके समझते थे यमुना जी है। तीसरे प्रकार महापुरुष वो टोटा मतलब बगीचा, टोटा उड़ीसा में टोटा बोलते हैं बगीचे को, तो एक बगीचा थे, उस बगीचा में महापुरुष उनका रहने का स्थान दिया। जैसे निताय गौर सुंदर, जय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर की, महापुरुष उधर रहने का स्थान दिया। तो उधर रहते थे, भजन करते थे और महापुरुष को भागवत सुनाते थे। भागवत बोलते हैं महापुरुष आगे पड़ी बोशी पड़े भागवत, सुधा राशे ढाले राशि राशि, इतने प्रेम से इतने सुंदर से पढ़ते थे, सुधा मात्र अमृत जैसे राशि राशि, मतलब बहुत क्वांटिटी जो है राशि राशि, वो ऐसे ही भागवत सुनाते थे। और कोई भक्ति रत्नाकर आदि में बताते हैं कि 100 बार जब चल रहा है प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र महापुरुष होना, क्यों साधक के लिए ये दो चरित्र बहुत ही लाभदायक है, बहुत प्रेरणादायक है। तो महापुरुष 100 बार सुने, तो हर दिन जाके महापुरुष भागवत सुनते थे। एक दिन चैतन्य महापुरुष जी भाव विवर हुए, रेत हटाने लगे। तो कोई नहीं समझ पा रहे कि ये क्या बात है, क्यों रेत हटा रहे। तब महापुरुष गदाधर जाके महापुरुष हाथ पकड़ लिए, प्रभु ये क्या कर रहे आप। तो बोले गदाधर यहां पे कोई निधि मिलेगा तो आप लोगे ना। बोला प्रभु आपके दिए हुए कोई भी वस्तु मेरा मुकुट मणि करके मैं लूंगा। तभी महाप्रभु ऐसे रेत हटाते हटाते गोपीनाथ जी की मुकुट मिल गया। तो जब भी मुकुट मिले सबको दिखाया, गदाधर को बुलाया, महाप्रभु देखो देखो मिल गया। तो सभी सभी मिलके उनको रेत हटा के साक्षात गोपीनाथ जी की जो टोटा गोपीनाथ है, वो गोपीनाथ के प्रकट कब के विग्रह वो तो इतिहास पता नहीं है, लेकिन महाप्रभु यहाँ पे प्रकट करके सेवा का दायित्व तो दिया। गदाधर पंडित को सेवा के दायित्व तो दिया, तो जो भी सेवा उनके श्रृंगार सेवा, उनके कुकिंग करना, ये करना, सो भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पतिवरा से घी आए, कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं है तो इमली के पत्ते पीस लेते थे, इमले के पत्ते पीस लिए और साग समुद्र से जल लाके लोना एक व्यंजन बना दिया। इसी प्रकार प्रेम से सेवा करते गोपीनाथ, और उत्र चालाकी किया गदाधर पंडित। चालाकी क्या है, वो सोच रहे थे कि जगदानंद पंडित को भी भेज देते हैं, कभी कभी जगन्नाथ पुरी भेज देते हैं, सची माता के पास सामान लेके या उनके कथा सुनाने के लिए भेज देते हैं। तो वो थोड़ा बुद्धिमानी दिखाया गदाधर पंडित की, ऐसे मैं कोई कार्य करो जिसके लिए मुझे महापुरुष भेज ना पाए। तो क्या ऐसे है, क्षेत्र सन्नाश, जगन्नाथपुरी के जो शंख क्षेत्र है, कोई भी ब्रजमंडल है, ये 84 करोड़ से या सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं जाना, वो इस क्षेत्र में रहकर भजन करने से बोलता है। क्षेत्र कोई भी वृंदावन हो, अयोध्या हो, द्वारिका हो, नवद्वीप हो, जगन्नाथपुरी हो, जब इस धाम में आप ऐसे क्षेत्र संन्यास ले सकते हैं। तो इसी प्रकार कि मैं महा, उनका मतलब ना क्षेत्र संन्यास का है, ना कुछ है, ना जगन्नाथ, उनका मतलब है महाप्रभु के साथ में रहना, एक ही मतलब उनका महाप्रभु के साथ में रहना है। तब उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिए और तो गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं, महाप्रभु उनको सेवा प्रकट करके सेवा दे दिए। तब चैतन्य महाप्रभु जब 3 संन्यास लेने के 4 साल बाद, क्योंकि महाप्रभु बहुत उत्कंठा वृंदावन आने के लिए है, तीन बार महाप्रभु फेल मार गए, वृंदावन निकले और वापस गए, निकल के वापस गए, 3 बार चल पड़े थे। तो गदाधर पंडित तो महाप्रभु रामानंद और प्रताप रुद्र महाराज सार्वभौम रामानंद को लगा दिया था कि कैसे जैसे तैसे, कैसे भी छल हो, कपट हो, कैसे भी हो, महाप्रभु को जाने देना नहीं, जगन्नाथपुरी में रखना है। तो कितना कोरा झूठ बोलते थे रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत झूठ बोल बोल के 2 साल तक रुकाया महाप्रभु को। तो 4 साल बाद महाप्रभु चल दिए वृंदावन, जब गौड़ देश होकर वृंदावन आने चाह रहे थे, इसी समय पंडित गोसाई जब उनको खबर मिला कि महाप्रभु तो श्री क्षेत्र छोड़ के जा रहे हैं, मेरा तो इस उद्देश्य नहीं है क्षेत्र संन्यास, मेरे उद्देश्य क्या है, महाप्रभु साथ में रहना, कभी जुदा नहीं होने चाहते थे, हमेशा साथ में रहना है। तो पंडित गोसाई जब उनको पता चला, पंडित गोसाई संगे ते चलीला, क्षेत्र संन्यास नाचारी हो प्रभु निषेधिला। तो जब उन्होंने साथ में चले कि मैं भी जाऊंगा, अरे तुम तो क्षेत्र संन्यास, तुम कैसे जाओगे मेरे साथ, क्षेत्र संन्यास कैसे छोड़ोगे। तो तेव कहे मर क्षेत्र संन्यास जाओ रसातल, जहा पंडित कहे जहा तुम्हें तहा नील चल, क्षेत्र संन्यास मोर जाओ को रसातल। महाप्रभु की पहली बात काट दिया कि बोल बाल के सब ठीक ठाक करके अनुष्ठान करके उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया, कभी मैं क्षेत्र त्याग नहीं करूंगा, कभी कोई परिस्थिति हो मैं क्षेत्र छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुरंत चलना तैयार हो गया, बोला मैं भी चलूंगा। तो बोला ये क्षेत्र सन्यास चला जाएगा, तो मैंने बोला रसातल चला जाए मेरा क्षेत्र सन्यास, जहां आप है, जहां आपके चरण कमल है, वही मेरा नीलाचल है, वही मेरा जगन्नाथपुरी, वही मेरा वृंदावन। अद्वैताचार्य बोलते तुम जहां, बोले कि अद्वैताचार्य से चैतन्य महाप्रभु बोले कब वृंदावन कब आए, बोले आप जहां है वही वृंदावन है। इसी प्रकार से बोलते ये आप जहां ये नीलाचल है क्षेत्र सन्यास में रसातल चला जाए। महाप्रभु एक बात तो काट दिया, दूसरी बात क्या है, यह करो गोप्त गोपीनाथे रो सेवन पंडित कहे कोटि सेवा तत्पादो दर्शन। एक बात तो क्षेत्र सन्यास तो पानी में बहा दिया, तो बोला ठीक है ये मैं आपको गोपीनाथ जी की सेवा दे दिया, आप सेवा करो, यहां करो, यहां बैठ के गोपीनाथ की सेवा करो। बोला कोटि करोड़ों करोड़ सेवा के फल केवल आपके चरण कमल दर्शन में है। तो हम लोग कहते हैं कि ये साक्षात जो विग्रह ये भी साक्षात है और महाप्रभु प्रकट करके दिए है, इसमें क्या गदाधर पंडित के मन में संशय है? तो फिर भी उन्होंने छोड़ने के लिए बोला, छोड़ने के लिए करोड़ों करोड़ सेवा के फल है, विग्रह सेवा के फल मेरा आपके चरण कमल के दर्शन है। तब ये बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए थे, सुखी लोग एक पत्थर में भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह बना दिए और राधारानी उसको आलिंगन करके रहती थी, और जैसे कृष्ण से मिलके जो सुख मिलते थे वो उस कृष्ण इस विग्रह को आलिंगन करके राधारानी को मिलते थे। लेकिन ऐसे को भी नहीं देखा गया कि कृष्ण आ गए और राधारानी उस विग्रह का आलिंगन कर रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं समझिए कि विग्रह सेवा विग्रह भगवान नहीं है, वो गदाधर पंडित अच्छा से जानते हैं। लेकिन चली तो जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु अभिन्न कृष्ण राधा कृष्ण है, उनको छोड़कर उनके साथ में रह रहा, उनको छोड़कर जैसे राधा रानी वो जो बनाए हुए सुखी के बनाए हुए विग्रह को आलिंगन करके घंटे से रखते थे, कृष्ण आलिंगन जैसे मिलते थे, लेकिन कृष्ण आने से कभी उस विग्रह के प्रति ऐसे उनके आकर्षण थे। इसी प्रकार गदाधर पंडित के भाव है। तो बोला तुम्हारा क्षेत्र सन्यास रसातल जा, प्रभु कहे सेवा छड़ीबे अमर लागे दोष, इहारो ही सेवा करो यामारो संतोष। तो महाप्रभु फिर बताया क्षेत्र सन्नत चला गया, गोपीनाथ की सेवा चला गया, ये बात भी काट दिया। तो बोला क्या है, बोले यहां रहकर सेवा करो, मैं इसमें खुश हूं। तो पंडित जी घुस्सा हो गए, पंडित घोषा होकर बोलता है ठीक है तुम्हार संग ना जाइबो, जाइबो एक सर आई के देखी दे जाइबो, ना जाइबो तुम्हार लगी प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार आमी भागी। तो महापुरुष बोले कि तुम सेवा, मैं तुम्हें सेवा में नियुक्त किया, तुम सेवा छोड़ दे मुझे दोष लगेगा। बोला ठीक है मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा और आपके लिए भी नहीं जाऊंगा, मैं सची माता के दर्शन के लिए जाऊंगा। और जब आपके आपने मुझे सेवा दिए, आपने माना किया, इस बात को जो भी आपके साथ में जाने से लगेगा, मैं आपकी बात को नहीं माना और आपके साथ में नहीं जाऊंगा, जो भी दोष है प्रतिज्ञा क्षेत्र सन्यास छोड़ना ये ठाकुर जी की सेवा, जो भी दोष लगे मेरा ऊपर लगे, क्योंकि आपके साथ तो मैं नहीं जा रहा हूं, आप तो बताए थे आपके बात में माने माना नहीं, तो दोष मुझे लगेगा और आपके साथ भी नहीं, मैं जब सची माता के दर्शन के लिए जाऊंगा। तो ऐसे बताए महाप्रभु, ये बोल के उनको शांति कर दिए। लेकिन महाप्रभु जब चल दिया, बोला कि आपके साथ नहीं जाऊंगा, तो वो भी अलग से जा रहे हैं, अलग से वो भी जा रहा है। जाते जाते महाप्रभु को सब पता है, मान लीजिए यह रुका वो जाके अटल चुंगी में कहीं पे रुका, महाप्रभु को सब पता है कि छोड़ के जा रहा है, फिर भी तभी कटक तक चले गए। ज्यादा वर्णन नहीं है, बोलते एक दिन में चला गया था, 60 90 किलोमीटर हो जाएगा कटक, तो 40-45 किलोमीटर एक दिन चलते थे। तो जो वर्णन चैतन्य चरितामृत में है, पहले दिन जाके भवानीपुर रुका, भवानीपुर के बाद में दर्शन किए, इतना वर्णन है, दर्शन किए भुवनेश्वर, जाके कटक में जाके रुके, साक्षी गोपाल दर्शन करके उधर ही रुके। वो भी राजा निमंत्रण की, उनके बाहर जैसे मंदिर है, मंदिर बाउंड्री के बाहर से, वो राजा के बाउंड्री के बाहर रुके। तो कटक तक पहुंच गए, कटक में जब रहे तो उसके बाद महापुरुष जब नाव में बैठ गए, इसी समय बोला गदाधर को बुलाओ। बोला गदाधर कहा है? बोला पता नहीं, उधर है, बुला के लाओ। तब गदाधर पंडित को बुलाया, बुला के महाप्रभु प्रेम से उनको हाथ पकड़े, हाथ पकड़ के बोलते, उनके प्रेम से महाप्रभु को बहुत खुश है, हाथे धोरी कहे प्रणय रोष, प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी यही तो मार उद्देश्य, सेई शुद्ध सेई सिद्ध होइला छाड़ी आइला दूर देश, तुम्हारा तुम सेवा छोड़ दोगे, तुम प्रतिज्ञा छोड़ दोगे, तुम सेवा यही तुम्हारा उद्देश्य, और वो आपने सिद्ध करके छोड़ा, आपने क्षेत्र सोर कर कटक तक पहुंच गया, वही आपने सिद्ध, यही तुम्हारा उद्देश्य था, तो मुझे दोष लगेगा, मुझे असंतुष्ट है। इसी प्रकार महाप्रभु कहने लगे, मोर संगे जाइते छो बांचो निज सुख, तुम्हार दुई धर्म जाए आमार हायो दुख। आप मेरे साथ रहने चाहते हो, आप मेरे साथ रहने चाहते हो, मेरे साथ जाने चाहते हो, लेकिन तुम अपना सुख की वांछा कर रहे हो, तुम अपने सुखी होना चाहते हो, वांछो निज सुख, तुम्हारा दोनों धर्म चला गया। क्या दो धर्म है? एक क्षेत्र संन्यास, एक ठाकुर जी के संकल्प सेवा, सेवा तुम्हारा दोनों धर्म जाता, मुझे दुख हो रही है। तो महाप्रभु इस बार ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे कि सभी बात को काट दिया, साधारण अस्त्र तो काट ही दिया, तो महाप्रभु ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, कैसे भी उनको रोकाना है। तो मोर सुख चाहो यदि नीला चले चलो, आमार शपद यदि आरो किछु बोलो। तो सभी के उद्देश्य है, ये सेवा करके मैं खुश होऊंगा, यहाँ रह के मैं खुश होऊंगा, इस पोजीशन में रहकर मैं खुश होऊंगा, ये उद्देश्य कोई भी भक्त की नहीं है। हमें ऐसे सेवा करना जिसमें गुरु गौरंग खुश हो, गौरंग खुश हो। वो बोलते हैं मोर सुख चाहो यदि, मैं मुझे खुशी करना चाहते, मुझे सुखी करना चाहते, तो यहां से कोई बात नहीं करना, बिल्कुल कोई सीधा नीलाचल जगन्नाथपुरी चला जाओ। यदि आप मुझे खुश करना चाहते हो, कोई बात नहीं चलेगा। और इसके बाद भी बात है तो मेरा सौगंध है, मेरा सौगंध है, ये ब्रह्मास्त्र है, तो ये सौगंध, इसके ऊपर तुम बात करोगे, कुछ बात करोगे तो मेरा सौगंध है। तो यही सभी भक्तों की यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य होने चाहिए। हम कैसे सुखी रहेंगे, हम कैसे नहीं, मोर सुख चाहो यदि, तो कैसे गुरु गरंग खुशी होगा, यही हमारा जीवन की लक्ष्य होनी चाहिए। भले इसमें कितना भी कष्ट हो, कैसे भी जगह जाना पड़े, कैसे, वो महाप्रभु बोल रहे हैं, महाप्रभु क्या चाह रहा था, महाप्रभु के साथ में रहकर उनकी सेवा करने चाहते, तो उनका क्या भी इच्छा था गदाधर पंडित की, कोई नहीं इच्छा था, अपने सुखी के लिए कोई डूजर नहीं था, लेकिन फिर भी महाप्रभु उनको बताया मोर सुख, यही इसमें मैं सुखी होऊंगा कि आप दूर रहो, आप मुझे निश्चल प्रेम करते हो, मेरे बिना रह नहीं सकते हो, फिर भी अब जाओ, इसमें मैं खुश होऊंगा। उनके दुख हो रहा है, बहुत दुख महापुरुष के मन में है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य उनको समझाते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको समझाते हैं, उनको बहुत दुख हो रहा है महाप्रभु को, उनके बिना वो भी रह नहीं सकते, लेकिन एक सिस्टम जो है, सिस्टम को बजाय रखना चाहते हैं महाप्रभु, नहीं तो दूसरा कोई उल्लंघन कर देगा, महाप्रभु उनको पसराए देंगे, तो दूसरा व्यक्ति की ऐसे बात को, गुरु गौरंग बात को उल्लंघन कर देगा,
महाप्रभु से बहुत खुशी है, लेकिन फिर भी शास्त्रों का स्थापना करने के लिए महाप्रभु आचार्य है और चारों ओर से महाप्रभु देखते हैं। तो इसके बाद ये बिल्कुल महाप्रभु नौका में बैठे थे, इसी समय बात हो रहा था, ये खड़े थे जल में और महाप्रभु बैठे थे, इसी बात करने के इसी बात जब कह दिया कि मेरा सौगंध है, तुरंत गदाधर पंडित पानी में गिर गया मूर्छित होकर कि मैं तो किसी भी हालत से नहीं जा पाऊंगा, कितना भी प्लान है सब प्लान मेरा ध्वस्त हो गया, उसी हाई पे गिर गया। महाप्रभु बोले कि इसके बाद भी कुछ बोल सकता है, प्रेम है ना, प्रेम कोई बात को नहीं मानता है, उल्टा उल्टा धारा है, कुछ फिर भी कुछ कह सकता। महाप्रभु बोले जल्दी चलाओ नाव, जल्दी चलाओ। तो अब सार्वभौम को बोला सार्वभौम जी इनको जल्दी ले जाओ। तो सार्वभौम जी उनको उठाए, उठा के लेकर उनको सांत्वना दिए, सांत्वना देकर उनको जगन्नाथपुरी, दोनों दुखी थे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी दुखी थे, ये भी बहुत दुखी थे। तीसरे प्रकार इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब बोले तो सार्वभौम उनको समझाए कि देखो तुम्ही जाने कृष्ण निजर प्रतिज्ञा छाड़िला भक्त कृपा बसे भीष्मेर प्रतिज्ञा रखिला। तुम जानते हो जो भगवान अपने प्रतिज्ञा को छोड़ दिया, अपने छोड़कर भीष्म की प्रतिज्ञा कर रखा किया, इसी प्रकार जितने भी सुख महाप्रभु हो लेकिन उसको छोड़कर दुख दुखी होकर भी आपकी जो धर्म है उसको रक्षा किया, इसी प्रकार मत प्रभु तुम्हार विच्छेद सहिया तुम्हार प्रतिज्ञा रक्षा के लिए जत्न करिया। इसी प्रकार महाप्रभु जी आपके विच्छेद से बहुत दुखी होंगे, बहुत दुखी होंगे, महाप्रभु को भी सहन करना पड़ेगा इस दुख को, मतलब कष्ट होगा उनके मन में गदाधर को छोड़कर। तो लेकिन फिर भी आपका जो प्रतिज्ञा है इसको बहुत यत्नों के साथ ध्यान रख के उसको रक्षा किया। इसी प्रकार गदाधर पंडित को समझाया सार्वभौम भट्टाचार्य जो, दोनों व्यक्ति शोक में निमग्न होकर शोकाकुल होकर ये जगन्नाथपुरी आया। प्रभु लगे धर्म कर्म छारे भक्तगण, भक्तो धर्म हानि प्रभुर न जायो सहन। भगवान भक्तो प्रभु के लिए भक्तो धर्म कर्म सब कुछ छोड़ देते हैं। जो गदाधर पंडित है जानते हैं मुझे इसमें बहुत हानि होने वाले हैं कि मैं इसे प्रतिज्ञा कर लिया, ये एक अच्छे व्यक्ति के लक्षण नहीं है कुछ को छोड़ देना, तो प्रभु के लिए कुछ भी छोड़ देते हैं भक्त लोग। तो धर्म कर्म जो जन्म जन्मांतर कुल परंपरा के रीति सब कुछ छोड़ देते हैं, धर्म कर्म सब छोड़े भक्तगण, लेकिन भक्त के धर्म की हानि प्रभु के द्वारा सहन नहीं होते हैं। भक्त धर्म हानि प्रभु ना जाए सहन, प्रभु नहीं सहन कर सकते हैं। भक्त तो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है, एक बिंदु चिंता नहीं है, लेकिन भगवान वो उनका रक्षक है। प्रेमेर विवर्तिया सुने जई जान अचिरी मिले तर चैतन्य चरण। प्रेम के विवार्थ जो व्यक्ति इसको सुनते हैं अचिरे बहुत जल्दी जल्दी उसे चैतन्य के चरण मिलेगा। कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दिए। इसी प्रकार गदाधर पंडित वापस आगे आना ही पड़ा। महाप्रभु जब वृंदावन जाने आ नहीं पाए थे तो जब रिटर्न आए सभी भक्त लोग आके मिले गदाधर पंडित के, निमंत्रण किए महाप्रभु को खिलाए, भजन करवाए, भक्त लोगों को भजन करवाए। तो महाप्रभु रहस्य करके बोलते हैं कि इसलिए मैं नहीं जा पाया वृंदावन, गदाधर को छोड़ के गया, इसलिए इनका दुख देके चला गया, इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो नाम गदाधर पंडित बोलता नहीं प्रभु, आप जहाँ है वही वृंदावन है, फिर भी भक्तों के लिए आप लीला करते हैं, भक्त को सिखाते हैं, एक लीला करते हैं कि वृंदावन जाने का। तो
तो ठीक है प्रभु, आप वर्षा रथ यात्रा से पहले महाप्रभु बंगाल से पहुंच गए थे जगन्नाथपुरी, तो बोले प्रभु अभी तो वर्षा ऋतु है, अभी जाना नहीं है आपको, वर्षा के बाद में शरद काल आना है। तो महाप्रभु तो भक्तों लोग भी बोले हाँ हाँ, जो गदाधर पंडित बोला यही सही बात है कि आप मत जाइए अभी, तो सभी शरद काल आने से, तो महाप्रभु शरद काल में चले और झारखंड के पास से ये तीन बार फेल मारा, तीन बार निकल के वापस गए, चौथा बार महाप्रभु वृंदावन पहुंचे। इसी प्रकार गदाधर पंडित और आग्रह नहीं किया दोबारा से वृंदावन आने के लिए, चाहे अब जो झारखंड गदाधर आग्रह नहीं किया। तो इसी प्रकार महाप्रभु रिटर्न गए, तो हमेशा भागवत सुनाते थे, और एक बार नित्यानंद प्रभु गए बंगाल से, थोड़ा चावल लेके, एक मान पता नहीं उसका एक मान का क्या क्वांटिटी है, एक मान चावल लेके गए, बहुत सुंदर चावल है, और एक सुंदर एक वस्त्र लेके गए। तो उसी बार जब गए वो महापुरुष से मिला नहीं, महापुरुष से नहीं मिला, वो जाके जगन्नाथपुरी जाकर कोई उद्यान में कोई गार्डन में बैठे थे, तो भक्त से मिला, भक्तों महापुरुष जाकर भक्तों लोग जाकर महापुरुष से मिले, महापुरुष आए श्रीपाद भाव विभोर होकर बैठे थे, तो महापुरुष जाके उनको परिक्रमा किए, परिक्रमा करके आ गए। तो इधर ये वस्त्रों और चावल लेके गदाधर पंडित को दिए, वस्त्रों भगवान ठाकुर जी को धारण करवाए, और वो चावल से गदाधर पंडित भोजन बनाए, भगवान को अर्पित किया। तो ये चावल है अबुना शाक, अबुना शाक मैं भी कभी निकालता हूँ इधर, जो अभी है ना वो गार्डन वगैरह में कभी अभी उगते हैं ना, जो बोया नहीं है उसको बोलते अबुना शाक, जो बोया नहीं जाते अपने आप उगते हैं उसको बोलते अबुना शाक। तो वो बगीचे के अंदर से अबुना शाक और इमली पत्ते, कोमल पत्ते लाए, उसको पीसा, और समुद्र सागर से पानी लाए, एक व्यंजन बना दिया अम्लों और एक शाक। तो इसको श्रृंगार आदि करके भोग लगाया, भोग लगाया, महाप्रभु निमंत्रण नहीं किया, लेकिन ये तो पता चला, घोरहोड़ी को पता चला, यहां से एक डेढ़ किलोमीटर तो हो ही जाएगा, एक किलोमीटर तो कम से कम होगा, एक किलोमीटर गंभीरा में महाप्रभु रहा, वो खुशबू उधर पहुंच गया, क्या ये शाक है और इमली पत्ते के जूस है, इसमें खुशबू पहुंच गया, चावल के खुशबू से महाप्रभु आ गए, आके बोला हरी हरी बस, अरे तुम लोग कैसे हो, एक तो नित्यानंद लाया चावल, गदाधर कुकिंग किए, और गोपीनाथ जी का प्रसाद, इसमें तो मेरा भाग है, तुम बिना भाग दे के ऐसे चोरी चोरी कर रहे हो, ये कैसे चलेगा, मुझे छुपा के दोनों मिलकर निताई गदाधर कैसे चलेगा, मुझे कैंसिल कर दिया, मैं ऐसे थोड़ी मानता हूं, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसी प्रकार महाप्रभु आ गए और महाप्रभु को बैठाए, महाप्रभु तो जोर जबरदस्ती भाग ले लिया, तो बोला दो भाग कर दिया था, ब्लड महाप्रभु अलग से उनको लिए भी रखा। तो वो प्रशंसा करते हैं, इतनी खुशबू, बोलते ये चावल तो यहाँ का नहीं है, ये तो गोलोक वृंदावन, और गदाधर तुम यहाँ की कुक नहीं हो, तुम लगता है बैकंठों में कुकिंग करते हो, ऐसे शाक, ऐसे खुशबूदार अन्न और ऐसे अम्लों तुम बना दिया, ये तुम जरूर हो अब गुलोक, गुलोक की अब कुक हो। तो इसी प्रकार महाप्रभु को खिलाए, महाप्रभु तीनों खाए, तो इसी प्रकार प्रसाद पाए उधर। एक बार क्या हुआ, गदाधर पंडित अपने जो मंत्र है, जो हमारा सेकेंड इनिशिएशन के जो मंत्र है, एक्चुअली किसी को अपने गुरु भाई को भी नहीं बोलना है, गुरु भाई को तब बोल सकते हैं जब गुरु जी की आज्ञा हो। गुरु जी आज्ञा नहीं हो तो ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र गुरु भाई को भी नहीं बोल सकते हैं। गुरु जी आज्ञा दिया तब बोल सकते हो। तो उन्होंने किसी को मंत्र बोल दिया था तो इसलिए उनके मंत्र में ध्यान नहीं लग रहा था, मंत्र में ध्यान नहीं लग रहा था तो वो कैसे ठीक नहीं हो रहा था। तो महापुरुष ने रिक्वेस्ट किया कि गदाधर पंडित कि आप मैं किसी को बोल दिया, अयोग्य व्यक्ति को मंत्र बोल दिया, जो बोलना जिसको नहीं चाहिए ऐसे अयोग्य व्यक्ति को बोल दिया, इसलिए मेरा मंत्र स्मरण ध्यान नहीं लग रहा है ठीक से, आप मुझे दोबारा मंत्र दे दीजिए। तो आपको मंत्र मिला, आपको गुरु जी से मंत्र मिला। आज तो आजकल तो ब्राह्मण देखा पेपर से देखा पता नहीं पेपर से ब्राह्मण देखा, वो तो कान में मंत्र होते हैं वैदिक नियम। तो इसी प्रकार मान लीजिए महाराज ना बोले तो कोई व्यक्ति को ऑथराइज कर दे सीनियर डिसाइपल, उनको कम से कम कान में बोलना चाहिए मंत्र। तो वो भी चलेगा तो गुरुजी कोई सीनियर डिसाइपल को बोल दे कि आप बोलो दो मंत्र बोल दो, वो भी चलेगा, बोल दिया। तो इसी प्रकार उन्होंने महापुरुष से रिक्वेस्ट किया, बोला नहीं नहीं आपके गुरुजी अभी तक जीवित है, मैं कैसे मंत्र बोलूंगा। बोले वो तो जीवित है लेकिन वो इधर है नहीं, दूर देश में है। बोले जो भी हो मैं आपको मंत्र नहीं दे सकता हूं, वो स्वयं भगवान है फिर भी बोलता मैं मंत्र नहीं दे सकता हूं। फिर वो आएंगे तब उनको दीक्षित। इसी प्रकार भक्त लोग के साथ पुंडरिक विद्यानिधि भी आए, आकर भक्त लोग चार महीने तक रहे। चार महीने रहने के बाद सभी भक्त लोग वापस गए और पुंडरिक विद्यानिधि उधर रह गए। रहने के बाद उन्होंने फिर दोबारा उनको मंत्र दीक्षा दिया, ऐसा बोल दिया फिर गुरु जी से आप दोबारा दीक्षा ले सकते हैं, उसी मंत्र को ले सकते हैं, सिस्टम है। बोल दिया वो काम नहीं करेगा और तो फिर दोबारा उस मंत्र को लेना है। तो उन्होंने दोबारा उस मंत्र को दिए पुंडरिक विद्यानिधि। तो उरण सृष्टि के दिन यात्रा तो आप लोग जानते हैं, जगन्नाथ जी वो बहुत क्लीन आदमी, मैं पहले ही बताया। वो पुंडरिक विद्यानिधि बोलते हैं जो मांड लगा हुआ होते हैं वो स्पर्श करने से हाथ धोना चाहिए, और जगन्नाथ जी उसको लगा दिया। बोले ठीक है सड़क दामोदर कुछ बात किए तो जगन्नाथ है कुछ भी धारण करता, ठीक है जगन्नाथ कुछ भी धारण करता तो पंडा उसको तो जगन्नाथ को कुछ भी ले सकता है वो डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन पंडा उसको तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो सड़क दामोदर के सामने बात हो लेकिन वो हाँ हूँ ज्यादा कुछ नहीं बोला, सड़क दामोदर जानते हैं तो दो थप्पड़ मारा। तो इसी प्रकार पुंडरिक विद्यानिधि ने उनको दीक्षा दोबारा दीक्षा दिए। तो इसके बाद उनको जगन्नाथ थप्पड़ मारे, गाल एकदम ऐसे हो गया। तो गदाधर पंडित जाके देख गुरु जी आते ही नहीं है, महाप्रभु बहुत खुश हो गए। वो ऐसे मारा मजाक से, मतलब वो भी हंसा था, जगन्नाथ जी हंस के मारा था, ऐसे नहीं क्रोध से मारा और हंसा दोनों, दो थप्पड़, एक जगन्नाथ एक बलाई, दो थप्पड़ मारा दो गाल में, एक दो उनका थप्पड़ खाएंगे तो क्या होगा। इसी प्रकार गाल एकदम फूल गया था, गदाधर पंडित महाप्रभु बहुत खुश हो गए, ये अपना समझते हैं आपको। इसी प्रकार गदाधर पंडित जी भागवत सुनाते थे और महाप्रभु के आज्ञा दिए थे कि आप महाप्रभु सिनेमा चल दिया था, महाप्रभु प्रकट नहीं हुए चल दिया था महापुरुष से मिलने के लिए, लेकिन इसी बीच में महाप्रभु गदाधर पंडित को आज्ञा दिया कि श्रीनिवास आएगा, मैं शायद रहूंगा नहीं, कैसे उनको बोले तो आप उनको थोड़ा भागवत की शिक्षा दे देना। तो और बहुत दुखी उन्होंने उसको समझाना, इसी बोल के महाप्रभु गोपीनाथ जी में मंदिर में प्रवेश किए, बस उसमें विलीन हो गए और नहीं है। तो इसी प्रकार सभी महाप्रभु चले गए, हर दिन के भांति भागवत लेके बैठते थे और गदाधर की जो तेज है, तेज तो अंदर है जैसे गौर भगवान भी कुकिंग करते हैं, ऊपर बिल्कुल राग दिखाई देता है, इसके अंदर तेज आग है, गदाधर भी ऐसे निस्तेज जैसे दिखाई दे रहे हैं, उनकी को भी उनका ज्ञान आता ही नहीं है। वो भागवत लेके बैठे रहते हैं और भागवत गदाधर के आंखों के तो हाथ से लिखा हुआ है, प्रिंट नहीं था, हच लिखा हुआ, उनके आंखों के जल से पूरा मिट गया। तो श्रीनिवास पहुंचा महाप्रभु के, एक तो महाप्रभु चले गए इसका विरह में, वो भी रो रहे थे। दूर से गदाधर के भाव देखकर बात करने चाह रहे थे, बात क्या करेंगे, उसके भाव है, उनकी चेतना है ही नहीं है। तो कभी उन्हें चेतना आए तो उनको महाप्रभु अपने गोद में, गदाधर अपने गोद में बैठाया, अपने इसे स्नान कर दिया और बोले कि भागवत पढ़ाने के लिए जो बोले थे, लेकिन ये भागवत मैं कैसे पढ़ाऊ, ये तो मिट गया। महाप्रभु होता तो बोल देते, मैं इसको लिखता, फिर वो तो है नहीं प्रभु, इस अक्षर कौन मिटाएगा। इसी प्रकार गदाधर पंडित की है। फिर उनको बंगाल आए भागवत लेने के लिए। भागवत लेके जब रोड पर पहुंचा चंडीगढ़ तक पहुंचा, शायद चंडीगढ़ तक पहुंचा तो सुना गदाधर पंडित भी जा चुका है। इसी प्रकार जो आषाढ़ की जो अमावस्या तिथि है, इस तिथि में भक्ति विनोद ठाकुर भी उसी तिथि में, एक ही तिथि में गलगमन अपने नित्य इसमें चले गए। ये पंचतत्व की बड़ी बड़ी उनका था। तिरोहब तिथि मनाते हैं गदाधर और श्रीनिवास की, बड़ी नहीं है, पांच पंचतत्वात्मक कृष्ण पांच की बड़ी नहीं है, ऐसी अप्रकट हो गए। तो इस प्रकार गदाधर पंडित के संक्षेप में थोड़ा बताएं, तो समय उती हो गया, यह विराम देते हैं। जय गदाधर पंडित की, जय पतित पावन निताय गौर सुंदर की, समेत जगत गुरु प्रभुपाद की, समेत गौर भक्तवृंद के निताय गुर प्रमनंदी।